कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय प्रथम वल्ली के द्वितीय मंत्र के ऊपर विचार चल रहा है। पराच कामन अनयंति बालास ते मृत्युर्यंति विदितस्य पाशम। जो अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं करता है और लक्ष्य प्राप्ति के साधन को नहीं जानता हो और साधन के महत्व को नहीं समझता हो, अल्पज्ञ अविवेकी, उसी को यहां पर बाल शब्द से कहा गया। जो अपने जीवन को खेलने कूदने में ही लगा दिया, बालक क्रीड़ायाम धातु है, खेलता रहता है, क्रीड़ा करता रहता है। माता पिता बहुत समझाते हैं, हित की बात कहते हैं बालक को, फिर भी हित की बात को नहीं समझता है। माता पिता मारते भी है बालक को। जैसे एक बालक की स्थिति ऐसी हुई तो विचार करना चाहिए, हम लोगों की भी तो ऐसी स्थिति है। परमात्मा भी सोचता है, गुरु भी सोचता है, देखो ये बालक को, अविवेकी अल्पज्ञ रूपी बालक को हमने कितना उपदेश किया, उपनिषद में किया, गीता में किया, भागवत में किया, स्मृति ग्रंथों में किया, फिर भी कहां समझता है, अज्ञानी। रोज उपदेश ही हो रहा है, सुबह शाम हो रहा है, तो जिस परमात्मा ने हमको मनुष्य जन्म दिया, मन बुद्धि इंद्रियों को चला रहा है, उसका प्रातः काल में उठ करके स्मरण करें, ध्यान करें, ये जो कर्तव्य है इसको कहां समझते हम लोग। तो हम लोग भी बालक ही है, तो भले ही उम्र बढ़ जावे, भले ही अपरा विद्या को प्राप्त कर लें, जब तक परा विद्या की प्राप्ति नहीं हो जाती है अंतःकरण में, तब तक हम लोग बालक ही है। जैसे न्याय शास्त्र में बालक कहते हैं ना, बालक तर्क संग्रह माता है, भाई न्याय का बालक कौन है, जिसने व्याकरण आदि ग्रंथों को पढ़ा हो और न्याय ग्रंथ को नहीं पढ़ा हो। अधीत व्याकरण काव्य को सत्य सती अनधीत न्याय शास्त्रत्वम बालत्वम। इसी प्रकार से सारे संसार के ज्ञान को प्राप्त कर लिया हो और परमात्मा सत्य का ज्ञान प्राप्त न किया हो, वही बालक ही है। तो बालक जैसे साधन के महत्व को नहीं समझता है, उसी प्रकार हम भी नहीं समझते हैं। तो अज्ञानी रूपी बालक मन के रस में ऐसा रमा है, तो किसी प्रकार साधन को नहीं समझता है, न कर्मों को समझता है, न उपासना को समझता है, न ज्ञान को समझता है। अब बालक जैसे माता पिता से मार खाता है प्रतिदिन, हम लोग भी तो मार खा रहे हैं, कौन सा मार, और क्या, रोज ही खा रहे हैं, है ना। जिसके प्रति आपने मोह किया वही बड़ा होकर के आप अपमान कर देगा, आपको कुछ नहीं आता, चुप रहो बोले। तो रोज संसार से अपमान हो रहा है हमारी हमारी निंदा हो रही है, उपेक्षा हो रही है, फिर भी अज्ञानी रूपी बालक का मोह संसार से नहीं जाता है। तो इसलिए श्रुति यहां पर कहती है जमराज जी के मुख से, तो ऐसे बालक की स्थिति क्या होगी, उनका क्या परिणाम होगा। कहते हैं देखो, पराचह कामन, ये जो भोग है बाहर के भोग, काम्यंतेति कामः, भोग के विषय को काम शब्द से कहा गया। तो बाहर के पदार्थ जितने भी होते हैं अपने से, उसमें पराधीनता है, स्वातंत्र नहीं है। बाहर के पदार्थ अपने को पराधीन ही बनाते हैं, स्वतंत्र नहीं बना सकते। भाई किसी चीज को आपने प्राप्त करने के लिए गए और उस समय कोई छीन कर ले जाता है, तो बाहर के पदार्थ की प्राप्ति में गारंटी नहीं है। तो बाहर के पदार्थ में सदा संघर्ष ही है, चाहे यह लोक का पदार्थ हो चाहे स्वर्गलोक का पदार्थ हो, इसमें गारंटी नहीं होती है। और मिलने पर भी कब मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। जागादी करेंगे स्वर्ग मिलेगा, ठीक है, चलो मिल भी गया तब भी स्वतंत्र कहाँ है भाई। शरीर के बिना, मन के बिना, इंद्रिय के बिना भोग नहीं सकते भैया। आपके पास चने बहुत सारे आगे खाने के लिए दांत नहीं है तो क्या करें, ऐसा भी है कि नहीं। तो बाहर का जो पदार्थ है, पराचह मतलब बाह्यन, कामहा भोगा, तो बाहर के भोग में पराधीनता होती है, संघर्ष सदा लगा रहता है। और आप अंतर्मुख बन करके परमात्मा का ध्यान करते हैं तो इसको कौन छीनेगा बताओ। ये अपना धन है, देखो ये परमात्मा का जो भजन है ये अपना धन है, इसको कोई भी छीन नहीं सकता देखो। और यहां पर ये भी समझना है, जितना अंदर अंदर जाएंगे उतनी स्वतंत्रता है। इसमें अगर परमात्मा का नाम, परमात्मा का रूप, ये भी बाहर है, किसकी अपेक्षा से, स्वरूप की अपेक्षा से देखो, तो निर्विशेष ब्रह्म की अपेक्षा से सविशेष ब्रह्म का नाम, सविशेष ब्रह्म का रूप, इसमें भी संघर्ष है देखो। संघर्ष है कि नहीं भाई, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ भाई, कौन से कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाएंगे, द्विभुजधारी का कि चतुर्भुजधारी का, इसे में बड़ी लड़ाई है कि नहीं। कोई कहते हैं द्विभुजधारी का करना चाहिए, कोई कहता है चतुर्भुजधारी का करना चाहिए। आप परस्पर संप्रदाय में भी लड़ाई है, वो कहते हैं कि ये बड़ा है, वो कहते हैं कि वो बड़ा है। सबसे पहले पूजा जिसकी हो रही है वो ना बड़ा होगा, शिव जी बड़े हैं कि भाई गणेश जी बड़े हैं, पंचदशी में सब सुनते हैं आप लोग, जब लड़ाई होती है कि नहीं, है ना। तो परमात्मा का नाम, परमात्मा का रूप, ये जो कल्पित है ये काहे के लिए है, ये उपासना के लिए है, समझ में ना भाई। ब्रह्म का कोई भी नाम नहीं है, कोई भी रूप नहीं है, ब्रह्म तो अनाम है, अरूप है, फिर भी उसका जो नाम और रूप है उपाधिक, ये काहे के लिए है, उपासना के लिए। इसलिए अशब्द गोचरस्यापि तस्सवे ब्रह्मणो द्विजः, पूजायां भगवत शब्द क्रियते युपचारत, उपचार से उपाधि को लेकर के ब्रह्म अनाम अरूप होने पर भी पूजा के लिए, पूजायां उपासनायां, पूजा अर्चना के लिए, स्तुति के लिए भगवान का नाम होता है, भगवान का रूप होता है। इसलिए आप अपने स्वरूप की ओर जितना अंदर जाएंगे उतनी स्वतंत्रता होती है। तो आप अंतर्मुख बन करके अपने में यदि परमात्मा का ध्यान करते हैं तो स्वतंत्र है, इसको कोई छीन नहीं सकता है। आप यदि बहिर्मुखी होते हैं, बाह्य पदार्थों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सदा संघर्ष होता है। इसलिए ये जो अल्पज्ञ अज्ञानी रूपी बालक लक्ष्य को नहीं समझता है, लक्ष्य प्राप्ति साधन के महत्व को नहीं समझता है, इसलिए बाहर ही दौड़ता रहता है, ठोकर खाता है। अरे ये बाह्य भोग जो है ना, ऐसा नहीं, ये बाह्य भोग ऐसा है, मान लो जैसे कोई पक्षी को पकड़ने वाला है ना, क्या बोलते हैं उसको, बहरिया, हिंदी में बहरिया बोलते हैं, है ना, बहरिया। तो बहरिया जो है ना पक्षियों को पकड़ता है, कैसे पकड़, जाल फैला दे, जाल है ना, ये बहुत बड़ा जाल फैला देता है और जाल में छोड़ देता है, छोटे छोटे फल छोड़ देगा, रोटी के टुकड़े छोड़ देगा, अनाज का दाना छोड़ देगा। काहे के लिए छोड़ता है, क्या पक्षी को खिलाने के लिए, क्या खिलाने के लिए नहीं, फंसाने के लिए, पकड़ने के लिए, है ना। इसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं कि ते मृत्युर्यन्ति विततस्य पाश, ये जो मृत्यु है अविद्या माया, ये है मृत्यु, है ना, अविद्या, अविद्या से कामना, कामना से प्रवृत्ति, अविद्या काम कर्म, ये हो गया मृत्यु, हो गया ना जी, है ना। तो अविद्या पूर्वक जो कामना हो रही है, कामना से प्रवृत्ति हो जाती है भाई, हो गया ना। तो कामना पहले है कि प्रवृत्ति पहले है, ये नहीं कह सकते, हो गया ना, कामना पहले है कि प्रवृत्ति पहले, ये नहीं, अनादि काल से चला आ रहा है। अविद्या अनादि पूर्वक कामना और कर्म प्रवृत्ति ये चला आ रहा है। तो अविद्या रूपी जो मृत्यु है, ये जाल फैला रखा है, जाल है ना, ये अज्ञानी रूपी, अविवेकी रूपी पक्षी को, जीवात्मा रूपी पक्षी को पकड़ने के लिए बहुत बड़ा जाल फैला रखा है और इसमें भोग छोड़ देता है, भोग है ना, ये अनात्म पदार्थ जो रूप, अच्छे अच्छे रूप, अच्छे अच्छे रस, अच्छी अच्छी भोग की सामग्रियां, ये हो गया दाना, दाना भोग छोड़ दिया। और ये जो अज्ञानी है, अविद्या के कारण नहीं समझ पाता है, ये फंसाने के लिए है, जैसे पक्षी नहीं समझ पाती है कि ये भोग छोड़ रखा है, फंसाने के लिए है, इसी प्रकार ये अज्ञानी रूपी जो पक्षी है, ये नहीं समझ पाता है। और क्या होता है उससे, तो मृत्योर विततस्य पाशम, अविद्या रूपी मृत्यु का जो पास, पास मतलब जिससे बांधते हैं ना, उसको कहते हैं पास, है ना बे, पाश्यते बद्धते येन इति पाशः, जिसके द्वारा फंसा जाता है, बांधा जाता है, रस्सी, हाँ रस्सी। तो यहां पर रस्सी क्या है, अविद्या कामना कर्म, ये तो मृत्यु है, ये तो फंसाने वाला है, तो कैसे फंसाएगा, रस्सी से। तो कौन सी रस्सी, यहां पर इस शरीर के साथ जो अहंता हो रही है, पकड़ में है ना भाई, ये शरीर बदलता रहता है, देखो ये खूटा खूटा बदलता रहता है, एक रस्सी नहीं बदलती है, ओके कि नहीं। तब ये कौन सा खूटा, अभी मनुष्य शरीर का खूटा है ये, है ना, तो मनुष्य शरीर मिला, यहीं पर अहमता कर दिया, देखो है ना, शरीर में अहमता कर लेना, यही बन जाना बस। जब तक शरीर में अहमता आप नहीं करते हैं, संसार का कोई भी पदार्थ आपको बांध नहीं सकता, अविद्या नहीं बांध सकती। विचार करके देखिए, आप सुसुप्ति में जाते हैं तो अविद्या है कि नहीं, शरीर भी है कि नहीं, तो शरीर में अमता है नहीं है। अब हाँ जी हाँ, शरीर को मैं मान लेते हो, मैं ब्राह्मण हूँ कहते कि कौन ब्राह्मण है? आत्मा ब्राह्मण है कि शरीर ब्राह्मण है? मिला करके तो बताना आपको शरीर में जब अमृत नहीं करेंगे तो आप अपने आप को ब्राह्मण नहीं बनेंगे। भले ज्ञानी अपने आप को ब्राह्मण कहता है हाँ, लेकिन आरोप करके बोलता है, वो समझता है ओके ना। ज्ञानी जो अपने आप को ब्राह्मण कहता है वो समझता है कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, इससे अलग है ना। तो ऐसा है तो सुषुप्ति में जाते हैं तो अविद्या तो है, स्वरूप का ज्ञान कहां होता है? सुषुप्ति में स्वरूप का ज्ञान होता नहीं है। यदि हो जाए तो फिर उड़ने के बाद मुक्त हो जाना चाहिए, तो ये सब मेहनत करने की क्या आवश्यकता है? तो सुषुप्ति में अविद्या है ना, अविद्या रूपी मृत्यु तो है लेकिन उसका पास नहीं है, पास अहमता नहीं है, है ना। इसलिए मनुष्य शरीर में गया तो अहमता कर लिया जी, और अच्छा कर्म नहीं किया, कर्तव्य नहीं किया, पाप किया तो पशु शरीर मिलेगा, अब पशु शरीर में गया तो वहीं पर फिर अहमता कर दिया, है ना। इसलिए शरीर रूपी जो खूटा है ये बदलता रहता है लेकिन अहमता रूपी जो रस्सी है पास, ये नहीं बदलता है। इसलिए यहां पर जमराज ये सावधान कराते हैं कि तुम अपने उद्देश्य को समझ लो, लक्ष्य को समझ लो, लक्ष्य प्राप्ति के साधन जो है वेदांत के श्रवण आदि है, मनुष्य जन्म का जो दुर्लभता है, अपना जो कर्तव्य है उसको तुम समझ लो। तो यहां पर यह समझना चाहिए कि भई हमको जो मनुष्य शरीर मिला, परमात्मा ने दिया, शरीर की जो दुर्लभता है, प्रत्येक क्षण मूल्यवान है, ये प्रत्येक क्षण जो मूल्यवान है इसका उपयोग हम किसमें कर रहे हैं, ये मनुष्य जीवन को किसके हाथ में समर्पित किया है? आप विचार कर लो, ये जो मूल्यवान क्षण है इस क्षण को आप खरीद सकते हैं पैसे से? कितने पैसे से खरीद सकते हैं, है ना। आयुष क्षण एकोपि सर्वरत्र न लभ्यते। नेपोलियन के बाद जानते हैं, युवा अवस्था में जब उनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु का समय आ गया, तो नेपोलियन कहता है कि आप पूरा संसार ले लो, सम्राट था वो पूरे विश्व का, एक क्षण मुझे दे दो, मेरी रक्षा करो। कोई रक्षा कर पाया? नहीं कर पाया। इसलिए अपने आप से पूछना चाहिए, ये जो हमारा मनुष्य जन्म है, मनुष्य जीवन है, हम किसके हाथ में दिया है? हम ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे दिया, उससे दुरुपयोग ही हो सकता है, सदुपयोग नहीं हो सकता है। संसार के भोग के हाथ में ही दे दिया हमने, खाने पीने में ही चला गया, राग द्वेष करने में ही चला गया, अनात्मा की चर्चा करने में ही चला गया, सदुपयोग कहां हुआ? दुरुपयोग हो सकता है। तो संपूर्ण संसार ही मिल गए तो क्षणिक सुख ही मिलेगा, स्वर्ग में जाएंगे तो क्या मोक्ष हो जाएगा? फिर आना पड़ेगा, चिड़े पुण्य मरते लोकम विसंति, है ना। चाहे मनुष्य शरीर, चाहे यहां का शरीर मिले, चाहे देवता का शरीर मिले, चाहे यहां का भोग मिले, चाहे देवता का जो है भोग मिले, दोनों पिंजरा है कि नहीं? चाहे लोहे की पिंजरा हो, चाहे सोने की पिंजरा हो, पिंजरा तो पिंजरा ही है, हो गया कि नहीं? हाँ, यदि हमने परमात्मा के चरणों में जो समर्पित कर दिया अपने जीवन को, गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया, शास्त्र के कर्तव्य में समर्पित कर दिया, तो समझना चाहिए कि गाड़ी ठीक चल रही है, आज नहीं तो कल चलेगी, है दिशा सही, ये समझना चाहिए। इसलिए तुम बालक मत बनो। और देखो ये जो लड़ाई झगड़ा होती है ना, उस समय तो अभिमान खूब करता है व्यक्ति। हम कितने बड़े आदमी है नहीं जानते हो, ये अभिमान करता है। लेकिन अभिमान करने का समय तो उस समय है जिस समय ये सांसारिक रूपादि भोग ये गले में रस्सी बांध कर खींच रहे हैं। देखो भोग अपने और खींच रहे कि नहीं, उस समय अभिमान करना चाहिए। देखो हम क्यों खींच रहे भाई, हमको हम तो परमात्मा का भजन करने वाले है ना, तो उस समय अभिमान नहीं करता है ना। जिस समय करना चाहिए जो स्वाभिमान है, स्वाभिमान तो साधन के समय करना चाहिए, व्यवहार करते समय नहीं है ना। तो ये तो बालक की स्थिति बता दिया। जो इस प्रकार लक्ष्य को नहीं समझता है, लक्ष्य की प्राप्ति के साधन को नहीं समझता है ना, ये पति का शरीर पत्नी के लिए साधन है और पत्नी का शरीर पति के लिए साधन है। ये साधन है, साधन हो गए कि नहीं। जैसे आप लोगों का शरीर आपके लिए साधन है, तो हम लोगों का शरीर अपने लिए साधन है। पहले कल बताया कि नहीं, कल परसों पत्नी किसको बोलते हैं, यज्ञ संबंधी पत्र नो यज्ञ संजोगे, ये पत्नी का नाम। तो स्वर्ग के लिए भी साधन है, मोक्ष के लिए भी साधन हो जाएगा, ये सबके लिए साधन है। इसको जी समझे और बोल जाए भोग का साधन है, भोग का सभी साधन समझेंगे तो हो गया कल्याण, फिर माया प्रसन्न हो जाएगी, बहुत अच्छा इसका है ना। तो जो बहिर्मुखी हो जाता है वो धीर कभी भी नहीं हो सकता है, आज धीर नहीं हो सकता है, वेदांत का अधिकारी नहीं बन सकता। ये तो बात हो गई बहिर्मुखी की। उत्तरार्ध में देखो जी, जिसके बाद पुस्तक है, अथ धीरा। लेकिन जो धीर पुरुष है, आत्मा अनात्मा का विवेक करता है, अंतर्मुखी होता है, संपूर्ण संसार का परीक्षण जिसने कर लिया, क्या परीक्षण किया, कहते हैं अध्रुवेशु ध्रुवम अमृतत्वम विदित्वा। ये सारा का सारा संसार कैसा है, अध्रुव अध्रुव अनित्य है। भाई संसार जब अनित्य है तो अनित्य संसार से नित्य आनंद की प्राप्ति कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती है। ये परीक्षण करना चाहिए। तो परीक्षण वही करता है जिसका चित्त शुद्ध हो गए ना। चित्त शुद्ध होए बिना परीक्षण संसार का नहीं कर सकता है। इसलिए चित्त जिसका शुद्ध है ऐसे साधक को कहा जाता है अक्षी पात्र कल्प। योग भाष्य में कहा गया अक्षी पात्र कल्प। जानते हैं अक्षी पात्र कल्प क्या होता है? जैसे ये जो अक्षी रूपी चक्षु रूपी जो पात्र है ना, इसमें थोड़ा सा भी कण गिर जावे, धूली का कण, थोड़ा सा भी कोई टुकड़ा गिर जावे, सहन नहीं होता है, सहन नहीं होता है। उसी प्रकार जो साधक होते हैं जिसका चित्त शुद्ध है, थोड़ा सा भी कहीं से दुख हुआ तुरंत अन्वेषण करता है दुख क्यों हुआ है, दुख का हेतु क्या है। ऐसे नहीं दुख हो रहा है, प्रतिदिन हो रहा है दुख, तो जिसका चित्त शुद्ध नहीं है वो परीक्षण क्यों करेगा। वो दुख का जो मूल हेतु है, जैसे अच्छा डॉक्टर है, मान लो अच्छा डॉक्टर है तो रोग का हेतु क्या है यही अन्वेषण। ऐसा नहीं कि देखते ही दवाई लिख दे, ऐसा नहीं है। ये अच्छे डॉक्टर की पहचान नहीं है, हो गई कि नहीं है ना। इसलिए कहते हैं यथा इदम शास्त्रम चतुर्व्यूहम, योग सूत्र में रोग रोग हेतु हो, भेषज्यम आरोग्यम। जैसे आयुर्वेद शास्त्र चार बातें को बताता है, पहला रोग क्या है, रोग क्या है, डायबिटीज है कि मलेरिया है कि क्या है ना। शरीर दर्द हो रहा है, बुखार से हो रहा है कि किसलिए हो रहा है, तो रोग का पहले अनुष्ठान किया जाता है। रोग का कौन सा रोग है ये, और रोग हुआ तो रोग का हेतु क्या है जी, ये दूसरा हो गया। रोग का हेतु क्या है, रोग क्यों हुआ, बुखार हुआ तो क्यों बुखार हुआ, ये डेंगू से हुआ है कि सर्दी जुकाम से हुआ, तो रोग का हेतु इसका अन्वेषण करता है ना। और तो रोग का निवारक जो औषधि है, भैषजम औषधि, किस औषधि से रोग का निवारण होगा, उसके साथ साथ पथ्य हो गया कि नहीं, ये भी तो बड़ी समस्या है, है? रोग का निवारक ये ज्ञान है, श्रवण मनन निध्यासन करेंगे तो ज्ञान होगा, लेकिन श्रवण कैसे करना चाहिए, केवल सुन लेना इसी का नाम श्रवण है कि श्रवण का कोई महत्व है, ये समझना चाहिए कि नहीं, है ना, ये भी समस्या है कि नहीं भाई। गुरु ने मंत्र आपको दे दिया, मंत्र का जप करना चाहिए, किस बुद्धि से मंत्र का जप करना चाहिए, कौन सा व्रत करके करना चाहिए, ये भी तो मालूम होना चाहिए ना। तो पथ्य के साथ साथ औषधि का सेवन, ये तीसरा, देखो तीसरा, ये आयुर्वेद शास्त्र का तीसरा प्रतिपाद्य है, उसके बाद जो आरोग्य की प्राप्ति है ना, इसी प्रकार यहां पर भी है आध्यात्मिक शास्त्र। संसार संसार का हेतु है, और संसार का निवर्तक, दुख का निवर्तक चौथा क्या है, मोक्ष। हाँ, ये अच्छे डॉक्टर की पहचान है। देखो कि जिसका चित्त शुद्ध हुआ है, यदि संसार से दुख मिल रहा है तो दुख का हेतु क्या है, दुख थोड़ा सा हुआ तो शुद्ध चित्त वाले को सहन नहीं होता है, सहन नहीं तो छटपटा था, ऐसा नहीं कह रहा हूं, वो अन्वेषण करेगा कि दुख का हेतु क्या है। दुख का हेतु बाहर नहीं, अंदर है, ये अन्वेषण करेगा। इसलिए साधक को कह दिया कि अक्षय पात्र कल्प, ऐसे जो अक्षय पात्र कल्प धीर, वो सारा संसार को अध्रुव समझता है, अध्रुव अनित्य समझता है, आत्मा से जितने भी अतिरिक्त है, चाहे अहलौकिक पदार्थ हो चाहे पारलौकिक पदार्थ हो, ये सब अध्रुव है, अनित्य अनित्य है। और ऐसे अध्रुव पदार्थ में एक ध्रुव छुपा हुआ है, छुपा हुआ है, परमात्मा तो कण कण में छुपा हुआ है कि नहीं, परमात्मा के बिना, ये नित्य पदार्थ के बिना अनित्य नहीं रह सकता है ना। जैसे सुवर्ण में अलंकार का नाम और अलंकार का रूप छुपा है, ये जो है कल्पित है, कल्पित है, सुवर्ण का नाम और सुवर्ण का रूप ये हो गया अध्रुव, ये तो आने जाने वाला है, लेकिन ध्रुव जो सुवर्ण है ये आने जाने वाला नहीं है। कल आप लोगों को बताया कि सुवर्ण को प्राप्त करना है तो गलाना नहीं पड़ेगा, अलंकार को गलाने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तो मोह छोड़ना पड़ेगा कि अलंकार का नाम और अलंकार का रूप ये तो कल्पित है, कल्पित आने जाने वाला है, सुवर्ण का ज्ञान करना चाहिए। सुवर्ण है ध्रुव, इसी प्रकार जो परमात्मा है कण कण में छुपा है, उसको समझना चाहिए कि ध्रुव शांति को यदि प्राप्त करनी है तो ध्रुव का आश्रय लेना होगा कि नहीं, और अध्रुव जो अनित्य का आश्रय लेंगे और नित्य की प्राप्ति हो ये नहीं हो सकती। इसलिए बुद्धिमान जो व्यक्ति है धीर, वो क्या करता है, अध्रुवेशु ध्रुवम अमृतत्वम, ये जो अमृतत्व है ना, अमृतत्व हाँ, अपने स्वरूप में ही अमृतत्व है, बाहर नहीं है, हो गया ना। इसमें महात्मा लोग सुनाते हैं, महात्मा लोग तो एक बार क्या हुआ कि नाराजी तो भ्रमण करते रहते हैं ना, पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं, और लोगों से पूछते रहते हैं भाई तुम्हारा क्या दुख है, दुख का निवारण हम करेंगे। तो संत को दूसरे का दुख देखा नहीं जाता है, ये पूछते रहते हैं नारद जी। तो एक बार जो सर्पों ने कहा कि महाराज हमको बहुत दुख है, सर्प क्या दुख है जी बताओ, ऐसा है कि रात में तो अंधेरा रहता है तो आहार के लिए तो हमने नहीं जा सकते, और दिन में जब जाते हैं तो ये मनुष्य लोग मार देते हैं, तो आहार खोजें तो कैसे खोजें हम, रात में कुछ दिखता नहीं और दिन में मनुष्य लोग मार देते हैं। तो नारद जी ने कहा जब ऐसी बात है तो कुछ उपाय करते हैं। चले गए शेषनाग के पास विष्णु रूप में। तो लीला करने में नारद जी को बड़ा आनंद आता है। तो शेषनाग के पास गए तो बोले क्या तुम यहाँ पड़े रहते हो, तुम्हारे जाति भाई लोग कितने दुखी है और तुम जो भगवान का वाहन बन करके पड़े रहते हो आसन बन करके। तो जब जाति के बारे में कुछ बोल देना किसी को तो आवेश आ जाता है कि नहीं, तुम्हारे जाति में ऐसा होता है, तुम्हारे धर्म में ऐसा होता है। अब बोल दीजिए देखो, यदि किसी को आवेश कराना तो यही उपाय है, तो तुम्हारे देश में ऐसा होता है ना, और तुम्हारी भाषा ठीक नहीं है। ये देखो ये जाति देश धर्म और अपनी भाषा अपनी मातृभाषा में बड़ा मोह होता है लोगों को, इसलिए कुछ महात्मा लोग भी होते हैं महात्मा बनने पर भी मातृभाषा को नहीं छोड़ पाते, बड़ा कठिन होता है। इसलिए जो अच्छे गुरु संत लोग होते हैं सबसे पहले अपनी भाषा को छोड़ो, तुम महात्मा को ना तुम्हारे मातृदेश में जाना है ना तुम्हारी मातृभाषा को बोलनी है। हाँ मोह होता है ना, तो मोह होता है भाई। तो जब ऐसा बोले नारद जी तो आवेश आ गया शेषनाग को, अच्छा कौन दुखी करता है कौन करता है बताओ। तो नारद जी ने कहा बात ऐसी है कि सर्प लोग भाई दिन में जाते हैं तो मनुष्य लोग मार देते, आहार नहीं मिलता है। तो शेषनाग ने कहा अच्छा मनुष्य लोग ऐसा करते हैं क्या, आक्रमण करूं क्या? तो कहा आक्रमण करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो भगवान के भक्त हो, भगवान के पास रहते हो, भगवान से तो प्रार्थना कर सकते हो ना, तो भगवान से तुम प्रार्थना करके मांगो, भगवान समर्थ है विष्णु जी, कोई ऐसी चीज दे देवे कि उस चीज को प्राप्त करके सर्प को भूख प्यासी ना लगे, बात खत्म। भाई सर्प तो बाहर जाते काहे के लिए जाते हैं, आहार आहार ढूंढने के लिए जाते हैं, और भूख प्यास ना लगे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तो मारेंगे नहीं। तो नारद जी की बात सबको जचती है, नारद जी ऐसे ही है, उनकी बात सबको जचती है, तो जज गई बात। तो भगवान के पास गए शेषनाग और भगवान प्रसन्न थे उस समय, तो भगवान को पूरी बातें सुनाई। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं हम एक उपाय करते हैं, एक झोला दे दिया झोला, और उन्हें कहा कि झोले में मणि रखिए, मणि मणि रखिए है, और सभी मणि में एक एक बूंद अमृत है, और इसमें छिद्र है, मणि के अंदर छिद्र है, और सर्पों के जीवा तो पैनी रहती है पतली रहती है, तो जीवा लगा करके पी ले अमृत तो भूख प्यास नहीं लगेगी और अमर हो जाएंगे, कोई मार भी नहीं सकता है। तो शेषनाग प्रसन्न हो गए, मणि बट गई, सर्पों ने अपने अंदर मस्तक के ऊपर मणि को धारण कर लिया सर्पों ने, और सर्पों ने सोचा देखो दिन में हम निकलेंगे ये मनुष्य ऐसे ही हमको ही मार देंगे मणि भी ले जाएंगे, इसलिए जब घोर अंधकार रात रात्रि का समय आएगा उस समय निकलेंगे। जब रात्रि का समय आया बाहर निकले मणि निकाले, और मणि जब निकाले प्रयास थोड़ा सा कर ही रहे हैं कि अमृत पीने के लिए, और मणि का जो प्रकाश है ना प्रकाश कि प्रकाश में छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं पतंगे एकत्रित हो गए। अब और पतंग को देख करके उसको ही खाना लेंगे सर्प। और मणि में अमृत है और ये अमृत का ऐसा महत्व है, अमृत को पीना चाहिए, इस बात को भूल गए। कीड़े खाने लगे, अभी भी कीड़े ही खाते हैं, बस मणि का प्रयोग है ये कीड़े खाने में ही लगा दिए, अमृत का पान करने में नहीं लगा पाए। ये तो कहानी होगी, दृष्टांत हो गया। तो हम भी सर्प की तरह है कि नहीं? बचो तो कीड़े तो खा रहे और क्या खा रहे है ना? ये जो अच्छे अच्छे रूप, अच्छे अच्छे रस, ये जो भोग की सामग्रियां, ये क्या है? ये कीड़े तो है और क्या है? ये सबकी बुद्धि में है ना, तो ये बुद्धि रूपी छिद्र में ये पारस मणि, मणि मणि है, मणि साक्षी, सबकी बुद्धि में साक्षी विद्यमान है, साक्षी विद्यमान है ना? और साक्षी के अंदर आनंद, आनंद जो अमृत है वो सभी में है, देखो है ना? तो बुद्धि रूपी जिह्वा से साक्षी के अंदर जो अमृत है उसको यदि पान नहीं करेंगे तो भोगों में ही लगे रहेंगे। इसलिए साक्षी का उपयोग, आनंद जो अमृत है उसका पान करने में नहीं लगा पाए, अपितु जो रूप और रस आदि जो छोटे छोटे कीड़े हैं उसको खाने में ही, उसका भोग करने में ही हम लगा दिए। इसलिए यहां पर जमराज जी सावधान कराते हैं कि पहले तुम धीर बनो, धीर बनो, अंतर्मुखी बनो। फिर अंतर्मुखी बन करके तुम विवेक कर लो कि क्या नित्य है और क्या अनित्य है। इसलिए तुम ये भ्रांति मत करो कि अनित्य पदार्थ से नित्य अमृत की प्राप्ति होगी, ये भ्रांति है। देखो इसलिए साधक क्या करता है कि अध्रुवेशु ध्रुवम अमृतत्वम विदित्वा, कि अनित्य पदार्थ में एक नित्य पदार्थ है आत्मा, और आत्मा का स्वरूप आनंद है, स्वरूप में आनंद है, बाहर आनंद नहीं है। इस बात को तुम पहले निर्धारित कर लो, बुद्धि में बैठा लो। तो बुद्धि में यदि बैठा लोगे तो फिर क्या होगा, ये कहते हैं देखो आगे, यह न प्रार्थयन्ते, संसार का कोई भी पदार्थ है चाहे यह लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो, किसी से भी शाश्वत आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्षणिक सुख की प्राप्ति तो हो सकती है। और जिसको ये निर्धारित हो गया कि परमात्मा ही आनंद है, अन्यत्र आनंद नहीं है, फिर इसका आश्रय क्यों करेगा जी? संसार का आश्रय नहीं कर सकता है। अब विचार करके देख लो कि परमात्मा के बल से युद्ध जीता जा सकता है कि परमात्मा की सेना से, है ना? ये सब मान बुद्धि इंद्रिया, ये अहलौकिक जो पदार्थ है, ये पारलौकिक पदार्थ, ये क्या है? परमात्मा की सेना है, सेना है। किसका आश्रय करना चाहिए? परमात्मा का आश्रय करना चाहिए कि परमात्मा की सेना का? भाई महाभारत में कौन जीता? परमात्मा का आश्रय करने वाला जीता है कि परमात्मा की सेना का? हाँ, केन उपनिषद जानते हैं ना, आत्मना बिंदते वीर्यम। साधक को जो बल प्राप्त है ना, बाहर से बल प्राप्त नहीं होता है, ये घी मलाई से बल प्राप्त साधक को नहीं होता है, ये तो शरीर का बल, जो बल वहां पर वीर्य कहा गया वो बल नहीं है, घी मले से होने वाला बल की बात नहीं है, अपितु आत्मा से जो बल प्राप्त होता है, आत्मबल है, ये परमात्मा का बल है। इसलिए साधक परमात्मा का आश्रय करता है, ये परमात्मा की सेना है, अहलौकिक पदार्थ पारलौकिक पदार्थ, इसका आश्रय नहीं करता है। इसका यदि आश्रय करते हैं तो ज्ञान का प्रतिबंधक है, इसलिए यहाँ पर भगवान भाष्यकार लिखते हैं कि प्रत्येक आत्मदर्शन प्रतिकूलत्वाद भाष्य में कि प्रत्येक आत्मा का जो दर्शन है परमात्मा का साक्षात्कार है कि परमात्मा का साक्षात्कार में ये प्रतिकूल प्रतिबंधक ऐसा ऐसा है ना पुत्रेषणा लोकेषणा वित्तेषणा है ना। तो विचार करके देखना चाहिए कौन सी ऐसा भाई ज्यादा प्रतिबंध है। सब तो है लेकिन तीनों में से ज्यादा कौन बराबर इनने सही कहा बिल्कुल सही कहा मैंने हाँ इसीलिए तो कह रहे मैं इसीलिए तो हम कह रहे हैं हमको तो हमारी अनुभूति में आती है कि भी सबसे ज्यादा प्रतिबंधक तो हमको यही लगता है लोकेशण। अच्छे अच्छे विरक्त भी दिखेंगे पैसा के प्रति मोह नहीं होता है लेकिन लोकेशण बहुत होती है हमारी पूजा करे हमारा मान सम्मान हो हमारा नाम हो बाहर हमको बहुत लोग जाने है ना हमको तो लगता है ये सबसे ज्यादा प्रतिबंध है ना। तो ये यदि ऐसा है चाहे पुत्रेषणा हो चाहे वित्तेषणा हो चाहे लोक ये साधन है। देखो साधन मानेंगे तो कोई बात नहीं हो गए कि नहीं ये प्रारब्ध के अनुसार ये मिल रहा है ये हमारा साधन है लेकिन इसी से हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे ऐसा नहीं है हो गया ना अंतर है। इसलिए यहां पर जमराज जी बोलते हैं कि यह मतलब संसार में न प्रार्थयन्ते किसी प्रकार के जो है भोग की इच्छा वो साधक नहीं करता है। तो ठीक है इस संसार में जो अनित्य में जो नित्य पदार्थ छुपा है परमात्मा उसी का ही आश्रय करता है उसी को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करता है। तो ये जो परमात्मा है जिसका स्वरूप नित्य अमृत है भाई उसका ज्ञान कैसे होगा परोक्ष रूप से होगा कि अपरोक्ष रूप से होगा। जैसे स्वर्ग है स्वर्ग में राजा है तो किसने देखा भाई जब जाएगा तब देखेगा अभी तो देखा नहीं है। तो स्वर्ग आदि स्वर्ग में राजा पाप पुण्य ये जैसे परोक्ष है वैदिक परोक्ष है शास्त्र अधिगम्य है ऐसा का परमात्मा परोक्ष होता हो जिसका स्वरूप आनंद है अमृत है कहते हैं ऐसा नहीं ये जो परमात्मा है ना ये साक्षात अपरोक्ष है। ये साक्षात अपरोक्ष के बाद आगे कहने जा रहे हैं यह साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म। अपरोक्ष भी दो प्रकार के हैं एक तो अपरोक्ष है केवल और दूसरा है साक्षात अपरोक्ष है दोनों में क्या अंतर है जी। इंद्रियादि प्रत्यक्ष प्रमाण से जो अधिगम होता है वो तो केवल अपरोक्ष हो गया है ना। तो जिसको जानने के लिए इंद्रियों की अपेक्षा होती है वो तो केवल अपरोक्ष हो गया प्रत्यक्ष को अपरोक्ष को। लेकिन जिसका ज्ञान इंद्रिय के बिना भी होता है हो गया ना उसको कहते हैं साक्षात अपरोक्ष। दोनों में अंतर है इसलिए आत्मा का जो अपरोक्ष होता है साक्षात अपरोक्ष है उसको जानने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। ये प्रकरण आगे का है देखिए ये न रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश्च मैथुनात् एतेनेव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वैत। पहले पूछा था नाचिकेता ने भाई शरीर छोड़ने के बाद आत्मा का अस्तित्व है कि नहीं है इसके बारे में देवताओं को भी बड़े बड़े लोगों को भी संशय होता है यही प्रश्न था पहले प्रथम अध्याय में उसी का उत्तर यहाँ पर दिया जा रहा है कि हे नचिकेता जिसके बारे में तुम्हारी जिज्ञासा है जिसके विषय में बड़े बड़े लोगों को संशय होता है वो यही है। क्या है क कहते ये न जिसके द्वारा, जिसके द्वारा ऐसा एक पदार्थ है जिस पदार्थ से ये व्यक्ति सबको जानता है। क्या का जाना जाता है जी? रूप भी जाना जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, देखो विचार करते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है एक पदार्थ का ज्ञान के साथ साथ दूसरे पदार्थ का भी ज्ञान हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो अलंकार का ज्ञान के साथ साथ सुवर्ण का भी ज्ञान हो जाता है, क्या नहीं होता है जी? है भैया, अभी दीपावली आएगी, ये चीनी से तमाम प्रकार की मूर्तियां बनती है, गणेश की मूर्ति, चूहे की मूर्ति, देवता की मूर्ति, है ना? तो जो बेचने वाला है देखो उनसे मांगो भाई, तो गणेश 1 किलो दे दो तो वजन करके दे देगा, देगा कि नहीं? और चूहे भी 1 किलो दे दो तो दे देगा। अब विचार करो, उनको गणेश का ज्ञान, चूहे का ज्ञान है कि नहीं? भाई ज्ञान दे देने तो कैसे देगा वो? ज्ञान है ना, है ना? आ दोनों की कीमत एक ही है। अब बच्चा बोला दोनों की कीमत एक ही कैसे? इसका मतलब दोनों चीनी से भिन्न नहीं है, उनके लिए चीनी की कीमत है, बेचने वाले के लिए हो गया ना। उनको दो ज्ञान है, देखो दो ज्ञान, बेचने वाले को चीनी का भी ज्ञान होता है और गणेश चूहे का भी ज्ञान होता है, हो गया ना भाई? इसी पे अगर जो ज्ञानी महापुरुष होता है ना, उनको दोनों का ज्ञान होता है। एक आत्मरूप जो पर्दा है उसका भी ज्ञान होता है, जो चीनी जो अधिष्ठान है उसका भी ज्ञान होता है, और दाल रोटी का भी ज्ञान होता है, कहने का भी है ना? ऐसा नहीं कि ज्ञान होने के बाद जो है चावल चावल पहले खा लेगा, दाल सब्जी को बाद में खाएगा, ऐसा ही क्या? हाँ, ये ज्ञान का फल नहीं होता है। कोई के बोलते हैं, मैं ट्रेन में जाते हैं कि स्वामी जी हाथ थोड़ा देख दो, ट्रेन में जाते हैं, बोले हम इस समय को नहीं आता, तो क्या महात्मा फिर? हाथ भी देखना नहीं आता, महात्मा क्या है? उनको भिक्षा भी नहीं मिलती आजकल, ऐसा ही हो गया है। ये जो कथा प्रबंध करते मिल जाता है तो नहीं करते उनको बड़ा मुश्किल। ये वास्तविकता है, देखो ये ज्ञान का फल नहीं होता है, है ना भाई? कोई पूछे ये बताओ भाई, रावण के नानी की नानी की नानी का नाम क्या है, तो कौन सा ज्ञानी बताएगा? ये जरूरी है कि ज्ञान होने के बाद बतावे? ये ज्ञान का फल नहीं होता, ये तो योगी भी बता सकता है। कोई तंत्र की साधना किया वो भी बता सकता है, तो ये ज्ञान का फल नहीं है, है ना? तो क्या कह रहे हम कि कभी कभी एक पदार्थ के ज्ञान के साथ साथ दूसरे पदार्थ के ज्ञान हो जाता है। जैसे आप रूप, आप जो है पुस्तक को देख रहे हैं, रूप को देख रहे हैं, तो जिस समय आपको रूप का ज्ञान हो रहा है, चक्षु का भी ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो गया ना, चक्षु का भी ज्ञान हो रहा है। तो जिस समय आपको रूप का ज्ञान हो रहा है, उस समय जैसे रूप का संशय नहीं हो रहा है, तो चक्षु का भी संशय है क्या? जिस समय आप देख रहे हैं चक्षु से, चक्षु है कि नहीं है? संशय नहीं होता है ना? लेकिन पुस्तक को जैसे साफ सामने रखते हैं, ऐसे चक्षु को देखने के लिए सामने रखने की कोई जरूरत नहीं है। पुस्तक के ज्ञान के साथ साथ चक्षु का भी ज्ञान हो जाता है, और चक्षु के ज्ञान प्रत्यक्ष है, ये परोक्ष नहीं है। ये देखो वेदांत के अनुसार, तार्किक के अनुसार तो चक्षुरादि अनुमेय है, कि वेदांत के अनुसार ये चक्षुरादि कैसे है? प्रत्यक्ष है, अपरोक्ष है। मन को अनुमेय मानते तार्किक जो, लेकिन मन कैसा है? प्रत्यक्ष है। देखो हो गया ना, वही तो कह रहा हूं भाई, सामने होने से ही प्रत्यक्ष होता है, ऐसी बात नहीं है। सामने न होने पर ही प्रत्यक्ष होता है। भाई मेरा मन है कि नहीं है, आपको संशय होता है क्या? नहीं होता है ना? वही तो कहना भैया, जिस पदार्थ में रूप हो उसी का ही प्रत्यक्ष होगा, ये कोई जरूरत नहीं है। जब पुस्तक में रूप है प्रत्यक्ष हो रहा है, लेकिन चक्षु में कोई रूप नहीं है, मन में कोई रूप नहीं है, रूप होने पर ही प्रत्यक्ष होगा ये कोई जरूरत नहीं है। पकड़ में भाई, ऐसा यदि मानेंगे तो आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होगा, फिर आत्मा में कोई रूप ही नहीं है, है? परोक्ष हो रहा है। अभी जो जीवात्मा है इसकी बात कह रहा हूं भाई, परमात्मा जोड़े अभी जो विशिष्ट जीवात्मा है ये प्रत्यक्ष है कि जो है भाई परोक्ष है? प्रत्यक्ष है। बाकी बात रहे कि इसमें आवरण है इसलिए आपको जो है विशिष्ट निर्विशेष आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं, वो बात अलग है। अभी जिसको आप मैं समझ रहे हैं वो जो अहम अर्थ है वाच्यार्थ विशिष्ट वो तो प्रत्यक्ष है ना, है ना? एक कोई जरूरत नहीं है रूपादि गुण हो तब जाकर के प्रत्यक्ष हो, ये बात नहीं है, है ना? तो जैसे देखो पुस्तक के ज्ञान के साथ साथ जैसे चक्षु का ज्ञान हो जाता है उसी प्रकार से अनात्म पदार्थ के साथ साथ आत्मा का भी प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। अगर साथ ही साथ करना है देखो, है ना? जैसे मान लो दृष्टांत के आधार पर जिस समय बल्ब का प्रकाश दिख रहा है फिर विद्युत का ज्ञान होता है कि नहीं? वहां तो परोक्ष है, दृष्टांत में यहां पर परोक्ष है, हो गया ना? लेकिन आपको विद्युत को जानने के लिए प्रकाश से ही जाना होगा, देखो प्रकाश के माध्यम से ही उसको जानेंगे, है सच में? चित्र के माध्यम से ही पर्दे का ज्ञान करना है तो ज्ञान करना है भाई जागृत में ज्ञान करना है कि स्वप्न में सुसुप्ति में? जागृत में ही करना है। और जब भी आंख खोलोगे यही रूप ही दिखाई देगा, फिर आत्मा को कैसे जानेंगे? ऐसे ही जाना जाएगा, आगे सच में? यही प्रक्रिया यहां पर जिस समय रूप का ज्ञान हो रहा है उसी समय जिस आत्मा से रूप का ज्ञान हो रहा है, कभी रूप बदल रहा है कभी रस बदल रहा है, है ना? ये जब ये दृश्य बदलते जाते हैं लेकिन रूप आदि दस दृश्य को जानने वाला वो तो एक ही है, वो आने वाला जाने वाला नहीं है। तो जिसके चैतन्य से सारे रूप आदि दृश्य जाने जाते हैं वो मेरा स्वरूप है, है ना? ये यहाँ पर प्रक्रिया है, बहुत सुंदर प्रक्रिया है, इसका विचार कल करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।